ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड न्यू जर्सी अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 5 जनवरी 2025 के लिए है। विषय परमेश्वर, स्वर्णपथ, भजन संहिता। परमेश्वर ने एक बार कहा है और दो बार मैंने ये सुना है कि सामर्थ्य परमेश्वर का है। उत्तरदायी अध्ययन शमूएल। उसने कहा, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़, मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर है, जिसका मैं शरणागत हूँ। मेरी ढाल, मेरा बचाने वाला सींग, मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा शरण स्थान है। हे मेरे उद्धारकर्ता, तू उपद्रव से मेरा उद्धार किया करता है। मैं यहोवा को, जो स्तुति के योग्य है, पुकारूंगा और अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया, मेरे कामों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया। क्योंकि मैं यहोवा के मार्गों पर चलता रहा और अपने परमेश्वर से मुंह मोड़कर दुष्ट ना बना। और दीन लोगों को तो तू बचाता है, परंतु अभिमानियों पर दृष्टि करके उन्हें नीचा करता है। यहोवा को छोड़ क्या कोई ईश्वर है? हमारे परमेश्वर को छोड़ क्या और कोई चट्टान है? ये वही ईश्वर है जो मेरा अति दृढ़ कला है। वो खरे मनुष्य को अपने मार्ग पर लिए चलता है। पाठ उपदेश बाइबल में से इतिहास। हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ्य और विभाव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वो तेरा ही है। हे यहोवा, राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुखे और महान ठहरा है। इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद और तेरे महिमा युक्त नाम की स्तुति करते हैं। यर्मिया। मैंने यहोवा से ये प्रार्थना की, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़े सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। तू हजारों पर करुणा करता है, हे महान और पराक्रमी परमेश्वर, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है। तू बड़ी युक्ति करने वाला और सामर्थ्य के काम करने वाला है। तेरी दृष्टि मनुष्यों के सारे चाल चलन पर लगी रहती है और तू हर एक को उसके चाल चलन और कर्म का फल भुगताता है। तूने मिस्र देश में चिन्ह और चमत्कार किए और आज तक इसराइलियों वरुण सब मनुष्यों के बीच वैसा करता आया है। और इस प्रकार तूने अपना ऐसा नाम किया है जो आज के दिन तक बना है। तब यहोवा का ये वचन यर्मिया के पास पहुंचा, मैं तो सब पुरानियों का परमेश्वर यहोवा हूं, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? यशवा। और यरू के सब फाटक इसराइलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यशवा से कहा, सुन, मैं यरू को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। सो नून के पुत्र यशवा ने याजकों को बुलाकर कहा, वचा के संदूक को उठा लो और साथ याजक यहोवा के संदूक के आगे आगे जुबाली के साथ नरसिंगे लिए चलें। फिर उसने लोगों से कहा, आगे बढ़कर नगर के चारों ओर घूम आओ और हथियार बंद पुरुष यहोवा के संदूक के आगे आगे चलें। और यशवा ने लोगों को आज्ञा दी कि जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा ना दूं, तब तक जय जयकार ना करो और ना तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए, ना कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए, आज्ञा पाते ही जय जयकार करना। उसने यहोवा के संदूक को एक बार नगर के चारों ओर घुमवाया, तब वो छावनी में आए और रात वहीं काटी। इस प्रकार वो दूसरे दिन भी एक बार नगर के चारों ओर घूमकर छावनी में लौट आए और इसी प्रकार उन्होंने 6 दिन तक किया। फिर 7वें दिन वो भोर को बड़े तड़के उठकर उसी रीति से नगर के चारों ओर 7 बार घूम आए। केवल उसी दिन वो 7 बार घूमे। तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते थे तब यशवा ने लोगों से कहा, जय जयकार करो क्योंकि यहोवा ने ये नगर तुम्हें दे दिया है। तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे। और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरेपनाह नींव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। और यहोवा यशवा के संग था और यशवा की कीर्ति उस सारे देश में फैल गई। यशाया। यहोवा ने सारी जातियों के सामने अपनी पवित्र भुजा प्रकट की है और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार निश्चय देख लेंगे। मरकस। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। मरकस। और वो आराधनालय में फिर गया और वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था और वो उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देखें वो सब्बत के दिन में उसे ठीक करता है कि नहीं। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो, और उनसे कहा, क्या सब्बत के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना। पर वो चुप रहे और उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ भड़ा। उसने भड़ाया और उसका हाथ ठीक हो गया। तब फरीसी बाहर जाकर तुरंत हेरोदियों के साथ उसके विरोध में सामती करने लगे कि उसे किस प्रकार नाश करें। और यीशु अपने चेलों के साथ झील की ओर चला गया और गलील से एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और यहूदिया से एक बड़ी भीड़ ये सुनकर कि वो कैसे अचंभे के काम करता है उसके पास आई। क्योंकि उसने बहुतों को ठीक किया इसलिए जितने लोग रोग से ग्रासित थे उसे छूने के लिए उस पर गिरे पड़ते थे और अशुद्ध आत्माएं भी जब उसे देखती थी तो उसके आगे गिर पड़ती थी और चिल्लाकर कहती थी कि तू परमेश्वर का पुत्र है। इफिसियों। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं कि वो अपनी महिमा के धुन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में समर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। अब जो ऐसा समर्थी है कि हमारी बीनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है कलीसिया में और मसीह यीशु में, उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युग युग होती रहे। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। दिव्य विज्ञान का प्रारंभिक बिंदु यह है कि ईश्वर आत्मा संपूर्ण है और ना ही कोई अन्य शक्ति है और ना ही मन है। वो ईश्वर प्रेम है और इसीलिए वो दिव्य सिद्धांत है जिसे प्राकृतिक विज्ञान कहा जाता है। क्रिश्चियन साइंस उसे रद्द करती है जहां तक ये मिथ्याएं परिकल्पना पर बनाया गया है कि सामग्री अपनी स्वयं की कानून दाता है। ये कानून भावतिक स्थितियों पर स्थापित है और ये अंतम है और दिव्य मन की शक्ति को खत्म कर सकते हैं। अच्छाई स्वाभाविक और आदिम है, ये अपने आप में कोई चमत्कार नहीं है। भावतिक कानून का पालन करने से आध्यात्मिक कानून का पूर्ण पालन होता है। वो कानून जो भावतिक स्थितियों पर काबू पाता है और सामग्री को मन के पैरों के नीचे रखता है। ये स्वीकार करना कि बीमारी एक ऐसी स्थिति है जिस पर भगवान का कोई नियंत्रण नहीं है, ये मानना है कि कुछ अवसरों पर सर्वशक्तिमान शक्तिहीन है। मसीह का नियम या सत्य आत्मा के लिए सभी चीजों को संभव बनाता है। बाइबल में आत्मा शब्द का प्रयोग देवता के लिए उतना अधिक किया गया है कि आत्मा और ईश्वर को प्रायः समान अर्थी शब्द माना जाता है, और यही कारण है कि क्रिश्चियन साइंस में भी इनका प्रयोग सामान्य रूप से किया जाता है और समझा जाता है, क्योंकि ये स्पष्ट है कि आत्मा की समानता भौतिक नहीं हो सकती। तो क्या इसका ये अर्थ नहीं है कि परमेश्वर अपनी समानता में नहीं हो सकता और बीमारों को ठीक करने के लिए दवाओं के माध्यम से कार्य नहीं कर सकता? जब ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता का प्रचार किया जाता है और उसकी पूर्णता को स्थापित किया जाता है, तो मसीही धर्म उपदेश बीमारों को ठीक कर देंगे। इतिहास हमें ये सिखाता है कि ईश्वरीय सत्ता और चरित्र के बारे में प्रचलित और गलत धारणाएं मानव मन में उत्पन्न हुई हैं। चूंकि वास्तविकता में केवल एक ही ईश्वर है, एक ही मन है, इसलिए ईश्वर के बारे में गलत धारणाएं अमर सत्य नहीं है, बल्कि मिथ्या धारणा से उत्पन्न हुई होंगी और वो लुपट हो रही हैं। ये झूठे दावे हैं जो अनंतता गायब हो जाएंगे। यदि ईश्वर का विरोध करने वाली वास्तव वास्तु है, तो दो शक्तियां अवश्य होंगी, तथा ईश्वर सर्वज्ञ और अनंत नहीं है। क्या देवता सर्वशक्तिमान हो सकते हैं? यदि कोई अन्य शक्तिशाली और सर्वसर्जन आत्मिक कारण विद्यमान है और मानव जाति को प्रभावित करता है, क्या पिता के पास स्वयं में जीवन है, जैसा कि धर्मशास्त्र कहते हैं? और यदि ऐसा है, तो क्या जीवन या परमेश्वर बुराई में निवास कर सकता है और उसे बना सकता है? क्या पदार्थ जीवन आत्मा को चला सकता है और इस प्रकार सर्वशक्तिमान को प्रकट कर सकता है? क्या देवता को भावतिक इंद्रियों के माध्यम से जाना जा सकता है? पदार्थ संवेदनाशील नहीं है और उसे अच्छे या बुरे, सुख या दुख का ज्ञान नहीं हो सकता। ईश्वर को एक शारीरिक उद्धारकर्ता के रूप में व्याख्या करने के लिए आना चाहिए, लेकिन ईश्वरी सिद्धांत या प्रेम के रूप में नहीं। हम क्षमा के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करना जारी रखेंगे, ना कि सुधार के माध्यम से, और बीमारों के इलाज के लिए आत्मा की बजाय सामग्री का सहारा नहीं लेंगे, जैसा कि नश्वर तक पहुंचते हैं। क्रिश्चियन साइंस के ज्ञान के माध्यम से एक उच्च भावना वो सीखने की तलाश करेंगे, ना कि पदार्थ से, बल्कि ईश्वरी सिद्धांत से। ईश्वर मसीह सत्य को उपचार और बचत शक्ति के रूप में कैसे प्रदर्शित करें? शिक्षक को विद्यार्थियों को चिकित्सक विज्ञान, विशेषकर इसकी नियुक्तता स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए कि सब कुछ मन है, और ये कि वैज्ञानिक को भगवान के आवश्यकतियों के अनुरूप होना चाहिए। इसके अलावा शिक्षक को अपने छात्रों को पाप के खिलाफ खुद का बचाव करने के लिए और मानसिक रूप से हथियारे होने वाले मानसिक हथियार के हमलों से बचाने के लिए पूरी तरह से फिट होना चाहिए। किसी अन्य शक्ति के अस्तित्व के रूप में कोई परिकल्पना को क्रिश्चियन साइंस के प्रदर्शन में बाधा डालने के लिए संदेह या भय का सामना नहीं करना चाहिए। अपने शीशे में छुपी हुई अच्छाई की ऊर्जाओं और क्षमताओं को उजागर करें। दिव्य विज्ञान से संपन्न मनुष्य की महान संभावनाओं को सिखाएं। पाप के द्वारा या उपचार के लिए भावतिक साधनों का सहारा लेने के द्वारा आध्यात्मिक समझ और सत्य के प्रदर्शनों को भावना बनाने की खतरनाक संभावना के बारे में सिखाएं। परमेश्वर में मसीह के साथ छुपी हुई जीवन की नम्रता और शक्ति को सिखाएं, और अन्य उपचार विधियों की कोई इच्छा नहीं होगी। जब आप ईश्वरीय तराजू पर मानव को तोलते हैं या विचार की किसी भी दिशा में ईश्वर की सर्वव्यापकता और सर्वशक्तिमानता को सीमित करते हैं, तो आप उपचार के ईश्वरीय नियम को अस्पष्ट और निरार्थक बना देते हैं। बुराई का, हर प्रकार की गलती का विरोध करें, तो वो आपसे दूर भाग जाएगी। त्रुटि जीवन के विपरीत है। हम ऐसा कर सकते हैं और अनंत तक करेंगे भी, कि हम हर दिशा में मिथ्यात्व पर सत्य की, मृत्यु पर जीवन की तथा बुराई पर अच्छाई की सर्वोच्चता का लाभ उठा सकें। और ये विकार तब तक चलता रहेगा जब तक हम ईश्वर के विचार की पूर्णता तक नहीं पहुंच जाते। सभी आतक स्वामी के लिए मनुष्य की दास्ता, जुनून, स्वार्थ, ईर्ष्या, घृणा और बदला केवल एक शक्तिशाली संघर्ष द्वारा विजय प्राप्त की जाती है। हर घंटे की देरी संघर्ष को और गंभीर बना देती है। यदि मनुष्य जुनून पर विजयी नहीं होता है तो वो खुशी, स्वस्थ और मर्दानगी को कुचल देते हैं। यहाँ क्रिश्चियन साइंस प्रभु की रामबाण औषधि है जो नश्वर मन की कमजोरी को ताकत देती है और अमर और सर्वशक्तिमान मन से ताकत और आध्यात्मिकता और खुद को मनुष्य से ऊपर उठाकर मानवता को शुद्ध इच्छाओं में और यहाँ तक के मनुष्य के लिए भी बनाती है। गलत इच्छाओं के गुलाम को क्रिश्चियन साइंस के पाथ सिखाने दें तो वो उस इच्छा पर विजय प्राप्त कर लेगा तथा स्वस्थ, खुशी और अस्तित्व के पैमाने पर एक पायदान ऊपर चढ़ जाएगा। मसीहत का इतिहास अपने स्वर्गीय पिता सर्वशक्तिमान मन द्वारा मनुष्य पर समर्थित शक्ति और रक्षा शक्ति के उदात्त प्रमाण प्रस्तुत करता है जो मनुष्य को विश्वास और समझ प्रदान करता है जिससे वो खुद का बचाव करता है, न केवल प्रलोभन से बल्कि शारीरिक पीड़ा से भी। अपने स्वयं के पंखों के नीचे बीमारी और पापी लोगों को इकट्ठा करके सत्य का अमर विचार सदियों से चल रहा है। मेरी थकी हुई आशा उस सुखद दिन को महसूस करने की कोशिश करती है जब मनुष्य मसीह के विज्ञान को पहचान लेगा और अपने पड़ोसी को अपने जैसा प्यार करेगा, जब वो ईश्वर की सर्वशक्ति मान्यता और उस परमात्मा की उपचार शक्ति का एहसास करेगा जो उसने किया है और मानव जाति के लिए कर रहा है। वादे पूरे होंगे, दिव्य चिकित्सा के प्रकट होने का समय हर समय है और जो कोई भी दिव्य विज्ञान की वेदी पर अपने संसारिक स्तर को रखता है वो अब मसीह के प्याला को पीता है और वो मसीही उपचार की भावना और शक्ति से संपन्न है। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझमें स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के सने को समर्थ कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।